एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास किताब की बात करने वाले हैं, एक ऐसी रचना जिसने पश्चिमी दुनिया को चीन के आम किसानों की जिंदगी से रूबरू कराया, पर्ल एस बक का कालजयी उपन्यास द गुड अर्थ।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जैसे चीन की मिट्टी की, वहां के लोगों के संघर्ष और उनके सपनों की एक पूरी गाथा है।
और इसकी लेखिका पर्ल बक वो भी कम दिलचस्प नहीं, अमेरिकन थी पर पली बड़ी चीन में।
40 साल अपने जीवन के पहले 40 साल उन्होंने चीन में बिताए। उनके माता पिता मिशनरी थे तो वहीं उनका बचपन उनकी जवानी गुजरी।
तो जाहिर है चीन की समझ उनमें बहुत गहरी थी, वहां की संस्कृति, आम लोग, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सब उनकी रगों में बसा था।
इसीलिए तो उन्हें अक्सर पूरब और पश्चिम के बीच का पुल कहा जाता है। उनकी भाषा भी देखिए कितनी सीधी सरल लगती है, पर उसमें एक अजीब सी लय है।
हाँ, जैसे कभी बाइबल की गूंज सुनाई दे, कभी चीनी लोक कथाओं जैसी मिठास, और इसी सादगी में बहुत गहरे मतलब छिपे हैं।
तभी तो वो पहली अमेरिकी महिला बनी जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1938 में।
हाँ।
और द गुड अर्थ के लिए पुलित्जर भी 1932 में।
और ये किताब द गुड अर्थ 1931 में आई थी और आते ही छा गई,
बेस्ट सेलर बन गई थी अमेरिका में।
हाँ।
ये असल में एक त्रयी ट्रिलोजी का पहला हिस्सा है, इसके बाद सन्स और अ हाउस डिवाइडेड भी आई।
ये उपन्यास हमें ले जाता है 20वीं सदी की शुरुआत के चीन में। वो एक उथल पुथल का दौर था, साम्यवाद अभी आया नहीं था लेकिन बदलाव की आहट थी।
पर इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये चीनी किसानों को किसी अजूबे की तरह नहीं दिखाता।
बिल्कुल, वो भी हमारी आपकी तरह इंसान हैं, वही रोज की जद्दोजहद, सपने, परिवार की चिंताएं, सही गलत के सवाल, सब कुछ है।
शायद इसी ही ये कहानी आज भी इतनी ताजा लगती है।
ये जमीन और इंसान का जो रिश्ता है ना, और किस्मत का जो चक्कर है, उसकी कहानी है ये।
कहानी का केंद्र है वांग लुंग। कौन है ये वांग लुंग? वांग लुंग चीन के अनहुए प्रांत का एक बहुत ही गरीब सीधा साधा किसान है। कहानी शुरू होती है उसकी जिंदगी के एक खास दिन से, उसकी शादी के दिन।
अच्छा।
वो हुआंग परिवार जो इलाके के बड़े जमींदार हैं, उनकी एक रसोई गुलाम ओलान से शादी करने वाला है।
तो ये शादी एक तरह से एक शुरुआत है।
हाँ, ये उस लंबी यात्रा का पहला कदम है जो वांग लुंग को गरीबी से अमीरी तक ले जाएगी। और ये पूरी कहानी जमीन से जुड़ी है, मिट्टी की गंध, फसलें, बारिश, सूखा, इन्हीं के बीच कहानी चलती है।
तो इसमें मुख्य संघर्ष क्या है? कोई विलेन है या
नहीं? कोई सीधा विलेन नहीं है, असल लड़ाई तो वांग लुंग के अपने अंदर चलती है।
अच्छा, किस तरह की लड़ाई?
सवाल यह है कि इंसान की खुशी का, उसके वजूद का असली मतलब किसमें है? क्या वो जमीन है जो उसे पालती है, जो उसकी पहचान है, या फिर वो पैसा, रुतबा, ऐशो आराम है जो दौलत से मिलता है?
ये तो गहरा सवाल है।
और जैसे जैसे वांग लुंग अमीर होता जाता है, उसका जमीन से रिश्ता वो कमजोर होने लगता है, फिर उससे अपनी कामयाबी के साथ जो नैतिक गिरावट आती है उससे जूझना पड़ता है।
और इस सफर में उसके साथ कौन है? ओलान का आपने जिक्र किया।
हाँ, ओलान। और शुरुआत में वांग लुंग खुद भी बड़ा मेहनती नेक दिल इंसान लगता है। उसकी दुनिया बस उसका छोटा सा खेत है, मिट्टी को छूना उसके लिए इबादत जैसा है।
उसका लक्ष्य क्या है शुरू में?
बहुत सीधा सा, परिवार का पेट भरना, अपने बूढ़े पिता का सम्मान करना और थोड़ी और जमीन खरीदना, बस।
और ओलान वो कैसी है?
ओलान वो खामोश है पर पहाड़ की तरह मजबूत, बहुत सहनशील, दिखने में एकदम साधारण लेकिन अंदर से गजब की ताकतवर और समझदार। वही परिवार की नींव रखती है चुपचाप।
तो वांग लुंग का किरदार बदलता है वक्त के साथ
बहुत ज्यादा। ये देखना बड़ा दिलचस्प और दुखद भी है। वो शुरू का सीधा मेहनती वांग लुंग, जिसके लिए मिट्टी सब कुछ थी।
हाँ।
वो कहाँ चला जाता है? वही तो, शुरू में आप उसके लिए हमदर्दी महसूस करते हैं, इरादे नेक हैं, लेकिन फिर जिंदगी इम्तिहान लेती है। अकाल आता है तो उसके जिस्म की परीक्षा होती है, फिर दौलत आती है तो उसकी आत्मा की।
और दौलत शायद ज्यादा बड़ा इम्तिहान साबित होती है।
बिल्कुल, जैसे जैसे वो अमीर होता है वो अपनी सादगी खो देता है, उसमें एक गुरूर आ जाता है। उसे अपनी पत्नी ओलान, जो कि एक किसान पृष्ठभूमि से है, उसे शर्म आने लगती है।
अच्छा।
हाँ, और वो फिर खुशी ढूंढता है लोटस नाम के एक खूबसूरत रखेल में। वो उसी जमीन से दूर हो जाता है जिसने उसे सब कुछ दिया था, शहर के बड़े घर का आराम उसे ज्यादा पसंद आने लगता है।
और अंत में बुढ़ापे में?
बुढ़ापे में उसे बहुत पछतावा होता है, अकेलापन महसूस होता है और उसका मन बार बार उसी जमीन की तरफ भागता है जहां उसे कभी सच्ची शांति मिली थी। उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे बाहरी सफलता अंदर का खोखलापन ला सकती है। जैसे कहते हैं ना, दुनिया जीत ली पर रूह हार बैठे।
और ओलान, उसका क्या होता है इस सफर में? वो तो जैसे इस कहानी की धुरी है, भले ही खामोश।
बिल्कुल, ओलान के बिना वांगलुंग की कहानी अधूरी है। वो उपन्यास की खामोश धड़कन है। एक गुलाम थी वो, जिसने जिंदगी से कभी कुछ मांगा ही नहीं, हर दुख चुपचाप सह लिया।
सपनों की दुनिया में नहीं जीती थी वो?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हकीकत की जमीन पर खड़ी थी। खेतों में जी तोड़ मेहनत करती है, बच्चों को भूखा नहीं मरने देती, और जब शहर में दंगे होते हैं तो कितनी होशियारी से वो अमीरों के घर से गहने चुरा लाती है, जिससे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।
तो परिवार की तरक्की में उसका बहुत बड़ा हाथ था।
सबसे बड़ा हाथ उसी का था। लेकिन उसकी कहानी त्याग और खामोशी से सहे गए दर्द की कहानी है। इतना सब करने के बाद भी जब वांगलुंग अमीर हो जाता है तो वो उसे नजरअंदाज करने लगता है।
क्यों?
क्योंकि अब उसे लगता है कि ओलान काफी गवार है और उसे एक ज्यादा नाजुक सजी संवरी औरत चाहिए।
ये तो बहुत बुरी बात है।
और सबसे ज्यादा चोट तब पहुंचती है जब वांगलुंग उसके बचाए हुए वो दो छोटे मोती भी उससे छीन लेता है।
हाँ हाँ, वो मोती, उनका क्या महत्व था?
वो मोती जैसे ओलान की अपनी छोटी सी ख्वाहिश थे, उसकी अपनी पहचान का टुकड़ा। उन्हें छीनना वांगलुंग की क्रूरता की हद थी।
फिर ओलान का अंत कैसे होता है?
एक लंबी बीमारी के बाद उसकी बहुत धीमी दर्दनाक मौत होती है। उसकी मौत सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं है, वो जैसे परिवार की नैतिक नींव का हिल जाना है, उस सीधे साधे अतीत से रिश्ता टूटना है जिसका प्रतीक ओलान थी। ओलान का चरित्र उस समाज में औरतों की जो अनदेखी ताकत होती है और जो दुख वो सहती हैं, उसका एक जबरदस्त चित्रण है। वो सच में उस धरती जैसी थी जिस पर वो चलती थी, मजबूत, सहनशील, जीवन देने वाली।
ये तो ही वांगलुंग और ओलान की पीढ़ी की बात। उनके बच्चे कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं?
उनके बेटे एक अलग ही दिशा में जाते हैं। वो जैसे जमीन से कटती हुई नई पीढ़ी है।
तीनों बेटे?
हाँ, तीनों की राहें अलग है पर तीनों ही जमीन से दूर भागे दिखते हैं। बड़ा बेटा नंगेन पढ़ लिख कर विद्वान बनता है। उसे अपने किसान माँ बाप से शर्म आती है, वो समाज में इज्जत चाहता है।
अच्छा, तो वो बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ?
हाँ, एक तरह से। दूसरा बेटा नंगवेन, वो बड़ा चालाक व्यापारी दिमाग का है। जमीन में उसकी दिलचस्पी सिर्फ मुनाफे तक है। वो जैसे बढ़ते पूंजीवाद का प्रतीक है।
और तीसरा?
तीसरा बेटा तो सब छोड़ छाड़ कर फौजी बन जाता है। वो उस वक्त चीन में जो उथल पुथल थी, नई ताकतें उभर रही थी, उस तरफ इशारा करता है।
तो बेटों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं लेकिन जमीन से लगाव नहीं।
बिल्कुल नहीं। मेहनत, किसानी, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं। ये देखकर वांगलुंग को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि जिस विरासत के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, उसके बेटे उसे यूं ही बर्बाद कर देंगे।
और इसी बदलते पारिवारिक माहौल में एक और किरदार आता है, लोटस। उसका क्या रोल है?
लोटस वो चाय घर की खूबसूरत नाचने गाने वाली। वांगलुंग उसे अपनी उपपत्नी बनाकर घर ले आता है। वो उन सारे लालचों का प्रतीक है जो वांगलुंग को भटकाते हैं।
वो ओलान से बिल्कुल अलग है।
एकदम उलट, उसके बंधे हुए छोटे पैर, नाजुक कपड़े, ऐशो आराम की चाहत, सब कुछ ओलान की सादगी और मेहनत के खिलाफ है।
उसके आने से घर पे क्या असर पड़ता है?
घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बंटवारा सा हो जाता है। वांगलुंग और बेटों के बीच दरार बढ़ती है और ओलान को तो असहनीय पीड़ा होती है। लोटस जैसे उस जिंदगी का प्रतीक है जो जमीन और मेहनत से कटी हुई है, दिखने में खूबसूरत पर अंदर से बंजर।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? वांगलुंग की ये यात्रा, उतार चढ़ाव, इसके मुख्य पड़ाव क्या हैं?
देखिए, कहानी को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है विनम्र शुरुआत का। वांगलुंग और ओलान की शादी, कड़ी मेहनत, जमीन से गहरा प्यार। ओलान खेतों में बराबर काम करती है, गर्भवती होने पर भी, बच्चे होते हैं। हर अच्छी फसल के बाद वांगलुंग थोड़ी और जमीन खरीदता है, वो भी गिरते हुए ख्वांग परिवार से। इस दौर में मूल्य साफ हैं, जमीन का सम्मान, परिवार, मेहनत। जीवन कठिन है पर संतुष्टि है।
लेकिन फिर हालात बदलते हैं।
हाँ, फिर आता है दूसरा पड़ाव, अकाल और पलायन। भयानक सूखा पड़ता है, खेत बंजर, भुखमरी, कोई चारा नहीं बचता तो उन्हें अपनी प्यारी जमीन छोड़कर दक्षिण के एक बड़े शहर जाना पड़ता है।
शहर की जिंदगी कैसी उनके लिए?
बहुत क्रूर, भिखारी बनकर रहना पड़ता है। चटाई की झोपड़ी, दूसरों की दया और उलान की हिम्मत पर गुजारा होता है। वांगलुंग रिक्शा खींचने लगता है। ये जिंदगी का सबसे कठिन दौर है।
और फिर वो मोड़ आता है गहनों वाला।
हाँ, वो तीसरा पड़ाव है। शहर में बलवा होता है, अमीरों के घर लूटे जाते हैं। उलान भीड़ के साथ एक घर में घुस जाती है और बड़ी चालाकी से गहनों का खजाना ढूंढ लेती है। ये गहने उनकी किस्मत बदल देते हैं, गरीबी से निकलने का रास्ता मिल जाता है। सच में किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि
राख से सोना निकलाया। तो इस सोने का इस्तेमाल कैसे होता है?
यही वांगलुंग की समझदारी दिखती है। वो घर लौटते हैं, अकाल खत्म हो चुका है, जमीन फिर उपजाऊ है। वांगलुंग पैसा उड़ाता नहीं बल्कि वांग परिवार से और जमीन खरीदता जाता है, मजदूर रखता है। धीरे धीरे वो गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार जमींदार बन जाता है। ये उसकी कामयाबी का शिखर है, उसका सपना पूरा हो गया है।
लेकिन यहीं से शायद नैतिक पतन की शुरुआत होती है, चौथा पड़ाव।
अफसोस, हाँ, अमीरी वांगलुंग को बदल देती है। उसे अब अपनी सीधी साधी जिंदगी उबाऊ लगती है। अपनी मेहनती पत्नी ओलान से शर्म आने लगती है। उसे लोटस की खूबसूरती खींचती है
और वो उसे घर ले आता है।
हाँ, उपपत्नी बनाकर। इससे घर की शांति भंग हो जाती है, ओलान टूट जाती है, बेटों से झगड़े होते हैं, वांगलुंग खुद आलसी हो जाता है, भोग विलास में डूब जाता है, खेतों से कट जाता है और मुश्किलें बढ़ती हैं। उसका लालची चाचा आकर रहने लगता है, डाकुओं की धौंस दिखाकर पैसे ऐंठता है, घर में जलन नाराजगी का माहौल बन जाता है।
और वो मोतियों वाली घटना भी इसी दौर में होती है।
हाँ, जब वो ओलान के सहेज कर रखे वो दो मोती छीनकर लोटस को दे देता है, ये उसके पतन की इंतहा है। धन ने मान तो बढ़ाया पर मन मैला कर दिया।
इसके बाद कहानी का अंत किस ओर जाता है, पांचवां और आखिरी पड़ाव?
हाँ, वृद्धावस्था और वो चक्र का पूरा होना। साल गुजरते हैं, ओलान जिंदगी भर की मेहनत और टूटे दिल के साथ एक लंबी दर्दनाक बीमारी के बाद मर जाती है।
मरते वक्त वांगलुंग को एहसास होता है?
हाँ, उसे अपराध बोध होता है, उसे ओलान की कीमत समझ आती है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। ओलान की मौत के बाद परिवार और बिखरता है। वांगलुंग बेटों की शादियां कराता है और पूरे कुनबे को लेकर शहर में उसी पुराने हुआंग महल में चला जाता है
जो उसके अपने उठान का प्रतीक था और शायद पतन का भी।
बिल्कुल, अब वो एक अमीर, ताकतवर लेकिन बहुत अकेला बूढ़ा आदमी है। बेटे सिर्फ उसकी दौलत में दिलचस्पी रखते हैं, जमीन से उन्हें कोई प्यार नहीं।
और अंत में
उसका मन बार बार अपनी जमीन की ओर भागता है। वो बेटों से कहता है कि उसे वापस गांव की मिट्टी वाले घर ले चले। वहीं कमजोर, मौत के करीब, वो बेटों से कसम लेता है कि वो जमीन कभी नहीं बेचेंगे।
और बेटे
हाँ कहते हैं, पर जैसे ही वो मुड़ते हैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पाठक समझ जाता है कि उन्होंने बाप के जाते ही जमीन बेचने की ठान ली है। उपन्यास इसी दुखद नोट पर खत्म होता है। ये दिखाता है कि उत्थान और पतन का चक्र चलता रहता है और अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी के बलिदानों को कैसे भुला देती है। पहिया घूमकर वहीं आ गया।
ये अंत तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पूरी कहानी से, इस महागाथा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं, क्या संदेश हैं इसमें? पहला तो शायद जमीन का महत्व है।
बिल्कुल, अच्छी पृथ्वी ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उपन्यास का केंद्रीय विचार है। जमीन ही जीवन है, नैतिकता है, पहचान है। वांगलुंग जब तक उससे जुड़ा है वो नेक है, खुश है। जैसे ही वो उससे कटता है वो भटक जाता है। उपन्यास कहता है कि इंसान की रूहानी सेहत प्रकृति से उसके रिश्ते पर निर्भर करती है।
और दूसरा, दौलत का खतरा।
हाँ, दौलत कैसे भ्रष्ट करती है, ये कहानी एक चेतावनी है। गरीबी शारीरिक कष्ट देती है पर अमीरी आत्मा को बीमार कर सकती है। ये वांगलुंग को घमंडी, क्रूर बना देती है, उसकी शादी, उसके रिश्ते सब बिगाड़ देती है। हुआंग परिवार का पतन जैसे एक आईना है।
और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है महिलाओं की स्थिति।
हाँ, उनकी ताकत और उनकी अधीनता। ओलान किसान औरत की खामोश अपार शक्ति का प्रतीक है। वो परिवार के लिए जरूरी है पर उसके साथ व्यवहार वस्तु जैसा होता है। उसका मोल बस काम करने और बेटे पैदा करने में है, उसका दुख दिल दहला देता है। और दूसरी तरफ लोटस है, सिर्फ सजावट की चीज। बाकिन दोनों के जरिए उस समाज पर सवाल उठाती हैं जो औरतों को कम आंकता है, पर टिका उन्हीं पर होता है।
इन मुख्य विषयों के अलावा और भी परते हैं इसमें, जैसे ये उत्थान पतन का चक्र।
हाँ, ये चक्र बार बार दिखता है, मौसमों का चक्र, जन्म मृत्यु का, परिवारों के बनने बिगड़ने का। हुआंग परिवार डूबा, वांग लुंग उठा, फिर उसके बेटे उसके मूल्यों को नकार रहे हैं। लगता है सब नश्वर है सिवाय जमीन के।
और परिवार परंपरा और आधुनिकता का टकराव भी है।
बिल्कुल, परिवार की पारंपरिक संरचना बदल रही है। बेटे नई पीढ़ी के हैं, जिनके लिए खेती से ज्यादा शिक्षा, व्यापार, फौज मायने रखती है। उनका जमीन बेचने का इरादा उस पवित्र बंधन के टूटने का प्रतीक है जिसने पीढ़ियों को जोड़े रखा था।
पक्की लिखने की शैली भी बहुत खास है, वो सादगी, वो लय।
हाँ, वो तीसरे पुरुष में कहानी कहती हैं, ज्यादातर वांगलुंग के नजरिए से, पर एक दूरी बनाए रखती हैं। भाषा सीधी, सरल, लयबद्ध है, जैसे कोई पुरानी कथा सुन रहे हो। अच्छी पृथ्वी जैसे वाक्यांश बार बार आते हैं जो उसे एक मिथकीय अंदाज देते हैं।
और प्रतीक, जाहिर है धरती सबसे बड़ा प्रतीक है। हुआंग का घर भी आपने बताया।
ओलान के मोती, वो मोती बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। वो ओलांग के छिपे हुए निजी मूल्य का प्रतीक है। जब वांगलुंग उन्हें छीनता है तो वो ओलान के वजूद का अपमान करता है।
और लोटस के बंधे हुए पैर,
वो उस बनावटी बेकार जिंदगी का प्रतीक है जो सिर्फ दिखावे की है, सुंदरता और रुतबे की निशानी, पर उसे लाचार बनाते हैं। ओलान के मजबूत, धरती पर चलने वाले पैरों के एकदम उलट।
उपन्यास में प्रकृति के बिंब भी बहुत गहरे हैं, मिट्टी की कंध, फसल का रंग, कुछ खास पंक्तियां जो याद रह जाती हैं।
कई हैं, जैसे जब वांगलुंग पहली बार ओलांग को देखता है और लड़की ने उसे देखा, उसका चेहरा गंभीर और सादा और शांत था। ये एक ऐसा चेहरा था जो मूग प्रतीक्षा के लिए बनाया गया लगता था। ये ओलांग के पूरे जीवन का सार बता देती है।
और वांगलुंग का जमीन के प्रति जुनून, जमीन किसी का मांस और खून है, एकमात्र चीज जो टिकती है।
हाँ, ये उपन्यास का मूल दर्शन है। और अंत में वो दिल तोड़ने वाली पंक्तियां, जब बेटे बाप से झूठ बोलते हैं लेकिन बूढ़े आदमी के सिर के ऊपर उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, ये कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है।
भावनात्मक रूप से ये उपन्यास बहुत गहरा असर छोड़ता है। ये बुनियादी इंसानी अनुभवों की कहानी है। वांगलुंग से हमदर्दी भी होती है, उसके पतन पर दुख भी। ओलान का किरदार तो भूलता ही नहीं।
हाँ, उसकी त्रासदी, उसकी सहन शक्ति और ये जिंदगी के चक्र का उतार चढ़ाव का गहरा एहसास कराता है। ये आज की तरक्की और कामयाबी की परिभाषाओं पर सवाल उठाता है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल में अच्छा जीवन क्या है, क्या वो भौतिक धन है या कुछ और।
ये हमें अपनी जड़ों की ओर देखने को कहता है, अपने रिश्तों, प्रकृति के साथ अपने संबंध के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े रहने में, इंसानी रिश्तों की मजबूती में है। ये हमें याद दिलाती है कि बुनियादी मूल्यों की क्या अहमियत है।
और यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें चेतावनी देती है कि तरक्की की अंधी दौड़ में अगर हम अपनी बुनियाद और प्रकृति से कट गए तो उसका नतीजा रूहानी खोखलेपन के सिवा कुछ नहीं होगा।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।